नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। अमरीकी सैन्य पनडुब्बी ने गॉल तट के पास ईरानी युद्धपोत आयरिस डेना पर हमला किया। इस हमले में अब तक 78 लोगों के घायल होने की खबर है। 80 शव बरामद करने की पुष्टि की गई है। यह घटना श्रीलंका के दक्षिण में लगभग 40 समुद्री मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई है। आयरिस डेना हाल ही में विशाखापत्तनम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 में भाग लेने के बाद स्वदेश लौट रहा था। उधर अमरीकी केंद्रीय कमान के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर जानकारी देते हुए कहा कि 100 घंटे से भी कम समय में लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमले किए गए हैं।
इसराइल रक्षा बल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों और अन्य प्रणालियों को भी निशाना बनाया। इसराइली वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो ईरान की वायु क्षमताओं पर हमले जारी रखे हुए है और वायु रक्षा प्रणालियों का संचालन करने वाले ईरानी सैनिकों को मार गिराया गया है। इसराइल की वायुसेना ने बैरूत में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। उधर अमरीका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार 28 फरवरी से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में ईरान में अब तक 1097 नागरिक मारे जा चुके हैं। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टेलीफोन के जरिए इस नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 1800118797। इसके अलावा संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय दूतावासों ने सुरक्षा उपायों और वहां से लोगों के निकलने के संभावित उपायों में मदद के लिए 24 घंटे आपात हेल्पलाइन भी शुरू की है। पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता के बीच एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। एयर इंडिया ने कहा है कि प्रभावित यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख बदलने या टिकट रद्द करने पर पूरा रिफंड लेने की सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा इस वर्ष 28 फरवरी या उससे पहले की गई सभी कन्फर्म बुकिंग्स पर लागू होगी। अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का समर्थन किया है। सीनेटरों ने सैन्य कार्रवाई रोकने के उद्देश्य से लाए गए द्विदलीय प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोकने के पक्ष में मतदान किया। सीनेट ने 53 के मुकाबले 47 मतों से प्रस्ताव को आगे न बढ़ने का फैसला किया, जो मुख्य रूप से पार्टी लाइन के अनुरूप था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे बहुपक्षीय मंचों से सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री फिनलैंड के राष्ट्रपति के सम्मान में दोपहर भोज का आयोजन करेंगे। श्री स्टब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। श्री स्टब रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भी हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे बेलगावी जिले के श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर में राज गोपुरम कलशारोहण और महाकुंभाभिषेक समारोह के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज कोलकाता में प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करने की घोषणा की है। दूसरी ओर वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल 8 मार्च को कोलकाता पहुंचेगा। इसके बाद आयोग के पश्चिम बंगाल का दौरा करने की संभावना है। नेपाल में आज नई संसद के गठन के लिए मतदान होगा। ये चुनाव पिछले वर्ष सितंबर में युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद पहला आम चुनाव है। उन प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत हुई थी और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। आईसीसी T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। मैच शाम 7 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। कल खेले गए सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। दोनों सेमीफाइनल मैचों के विजेता 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।